مدنی چینل کے ناظرین، ڈیئر ویورس آف مدنی چینل، یہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں اور آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا دیکھا جائے گا۔
دنیا بھر میں ہر سال آسمانی بجلی گرنے کے 240,000 واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں۔
ملک بھر کے 51 اضلاع اس وقت ٹڈی دل کے حملوں کی لپیٹ میں ہیں۔
طلاق کی قانونی جنگ لڑتے لڑتے جوڑا کنگال ہو گیا۔
دہائیوں سے جاری تمباکو نوشی پر کنٹرول کی پالیسیز کے باوجود دنیا بھر میں شراب پینے کے باعث ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے۔
سگریٹ کے انسانی جسم پر بہت اثرات ہوتے ہیں۔
12 پیکس ایک سال میں بھی پی لے، 12 پیک شراب کے، تو اس کو شرابی کہا جاتا ہے۔
ٹڈی دل کا بہت شدید حملہ ہوا۔
ہر کہنے او کو بجاون واسطے برتن وغیرہ کٹن، کہنے دھوئیں لین، کہنے کوجگی تیل۔
ہم نے یا حلیموں کا کاغذ پر لکھ کر ٹینک سپرے کی۔
امیر اہل سنت کا یہ جو کرم تھا، فیض تھا، اس کی وجہ سے ہم نقصان سے بچ گئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹرز کے بھی تاثرات ہیں، آپ کی کالز بھی ہیں، ڈاکیومنٹری بھی ہے اور دیگر خبریں بھی ہم نے انشاءاللہ آج آپ کو بتانی ہیں۔ ہم چونکہ ڈاکیومنٹری تیار کرتے ہیں، ایک ویڈیوز تیار کرتے ہیں جو آپ کو پوری طرح کھول کر بیان کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آسمانی بجلی، ٹھیک ہے، ہم آسمانی بجلی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب جو آسمانی بجلی کیا ہے اور اس کی ایک ہسٹری بھی ہے اور اس کے معاشرے پر جو جو اثرات ہو رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں، سب سے پہلے آپ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آسمانی بجلی کے تعلق سے کچھ مزید وضاحت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آسمانی بجلی چمکنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم۔ موسمیات کے عالمی ادارے نے 700 کلومیٹر طویل بجلی چمکنے کی خبر جاری کر دی۔ آسمانی بجلی ایک ایسا فطری مظہر ہے جس کی ہیبت اور دہشت صدیوں سے قائم ہے، اور آج بھی انسان اس فطری مظہر سے حیرت زدہ ہے، کیونکہ صدیوں پہلے کی طرح یہ آج بھی انسانوں کی جان لے رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال آسمانی بجلی گرنے کے 240,000 واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں، جس کے باعث جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، جانوروں کی ہلاکت اور بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، 28 جون کو آسمانی بجلی گرنے سے متعلق آگہی کا دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح رواں سال بھی 28 جون کو دنیا بھر میں یہ دن منایا گیا۔ اس موقع پر موسمیات کے عالمی ادارے نے 2 روز قبل یعنی 26 جون کو ایک خبر جاری کی، جس میں بجلی چمکنے کے 2 واقعات کو عالمی ریکارڈ قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے موسمیات کے ادارے WMO نے کہا ہے کہ انہیں جنوبی امریکہ میں بڑے پیمانے پر آسمانی بجلی چمکنے کے 2 واقعات کی تصدیق ہوئی ہے۔ بجلی چمکنے کے یہ دونوں واقعات اپنی لمبائی اور دورانیے کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ ہیں۔ موسم اور آب و ہوا کے شدید حالات سے متعلق کمیٹی نے بجلی چمکنے کے ان دونوں واقعات کی تصدیق کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کی۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نصف کرائے ارض عالمی اور علاقائی سطح پر موسموں کی شدید صورتحال کی ریکارڈ مرتب کرتی ہے۔ موسمیات کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اس سلسلے کا پہلا واقعہ جنوبی برازیل میں 31 اکتوبر 2018 میں رونما ہوا تھا۔ اس میں آسمانی بجلی کے چمکنے کی لمبائی 709 کلو किलोमीटर थी, जबकि सबसे तवील दौरानिए तक आसमानी बिजली चमकने का रिकॉर्ड 4 मार्च 2019 को कायम हुआ। आसमानी बिजली का ये कड़ाका शुमाली अर्जेंटाइन के आसमान पर 16.73 सेकंड तक देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आसमानी बिजली हर साल कई जाने ले लेती है। ऐसा ही एक वाकया 26 जून को इंडिया की दो रियासतों बिहार और उत्तर प्रदेश में रोनुमा हुआ, जहां आसमानी बिजली गिरने से 116 अफराद हलाक हो गए। इंडिया में 2005 से हर साल कम से कम 2000 अफराद आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो जाते हैं। यकूम अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के इलाके सवात में कालाम के पहाड़ी इलाके में भेड़ों के रेवड़ पर आसमानी बिजली गिरने से 150 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हो गई थी, जबकि 15 नवंबर 2019 को सिंध में थरपारकर और सांगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 26 अफराद हलाक हो गए थे। याद रखें, आसमानी बिजली की चमक को कड़क के वक्त बहुत से लोग इस तूफानी बिजली की वीडियो बनाने के लिए निकल आते हैं। ऐसे शदीद मौसमी हालात में जरा सी बेएहतियाती किसी नुकसान का बाइस बन सकती है, खास तौर पर जब मोबाइल फोन या लोहे वगैरह के आलात आपके हाथ में हों। आसमानी बिजली वाकई बहुत खौफनाक कुव्वत है और ये आपके घर के अंदर भी पहुंच सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आसमानी बिजली आपके घर के बाहर किसी इलेक्ट्रिक तार, टेलीफोन लाइन, प्लम्बिंग पाइपों या छत पर नस किसी पोल या लोहे की चीज से टकराती है, तो ये उसके जरिए आपके घर के अंदर पहुंच जाती है। लिहाजा अगर आप किसी ऐसी चीज जो आसमानी बिजली से मुंसलिक हो चुकी है उसको छूते हैं तो नुकसान हो सकता है। आपके घर में मौजूद कंप्यूटर, टेलीविजन, एयर कंडीशन जैसी मशीनें भी आप तक आसमानी बिजली के असरात पहुंचाने का जरिया बन सकती हैं। तूफान और बादलों की गरज चमक के दौरान अगर आप घर में मौजूद हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस के स्विच ऑफ कर दें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने आसमानी बिजली के ताल्लुक से एक अच्छी खासी मालूमात सुनी है। मैं यहाँ पर इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मजीद कुछ आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ, जो अल्लाह की रहमत से आपकी मालूमात में भी इजाफा लाएगा और बहुत कुछ बातें समझने का हमें मौका मिलेगा। यहाँ पर शाह रूम हरकल ने हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जो एक मकतूब यानी लेटर लिखा, उसके ताल्लुक से मर्ज करूंगा कि उसमें लिखा था कि उसमें चंद सवाल पूछे गए थे। इनमें से दो सवाल ये थे, आसमानी बिजली क्या है? रात, सूरह रात आपने नाम सुना होगा, और आसमानी बिजली क्या है, और रात यानी गरज, और इसकी आवाज क्या है? तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो कुछ जवाब अता फरमाए वो ये थे कि आसमानी बिजली से मुराद फरिश्तों के हाथों में वो कोड़े हैं जिनसे वो बादलों को मारते हैं, और रात ये फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाता है और उसकी आवाज उसकी कड़क है। ये मकतदुल मदीना की किताब है, बहुत प्यारी किताब है, दीन और दुनिया की अनोखी बातें। इसके पहली जिल्द के सफा नंबर 94 पर ये बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान की हैं। यहां पर रात के ताल्लुक से मैं कुछ अर्ज करता हूं। रात उस आवाज को कहा जाता है जो थोड़ा मुश्किल वर्ड आएगा लेकिन मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूं, जो अजसाम समाविया, समाविया ये आसमानों की तरफ से मुराद है, की रगर से पैदा होती हैं और बादल में सुनाई देती है। यानी दो बादलों के टकराने से गरज, दो बादलों के टकराने से गरज और चमक के वक्त पैदा होती है। आसमान की गरगराहट है जो बारिश के वक्त बिजली की सूरत में बादलों से जमीन की तरफ उतरती है, उसको बिजली भी कहा जाता है। यह उस वक्त होता है जब बादल जमीन के करीब होते हैं और ये आग जिस चीज पर गिरती है उसे जला देती है। ये कुछ बादल, बिजली, कड़क, रात, इसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने कुछ मालूमात बयान करने की कोशिश की है। मजीद इस पर कुछ चलते आगे। गरज यानी बादल سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے تسبیح کرنے کا بھی یہاں پر بیان ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعِدُ بِحَمْدِهِ اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے اللہ وحدہ لا شریک کی. ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس کی آواز کو سن کر اللہ تعالی کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں. بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے, وہ اس کو چلاتا ہے اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا اے ابو قاسم ہمیں بتائیے کہ رعد کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے, اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے, وہ اس سے جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہنکاتا ہے یعنی چلاتا ہے. انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے. انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا. تو یہ ایک تصور ہے جسے میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا ہے. یہ جو بجلی کا یہ جو کڑک آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہوا, گرج چمک وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جسے بس اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان چیزوں سے بچا کر رکھے اور اللہ عافیت اور عافیت والا معاملہ کرے. یہ کوئی تفریح لینے والے اور دلچسپی لینے والے معاملات نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرو, کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی. انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں, اس آفت سے رب کی رحمت سے بچے رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت جو دعا آپ پڑھتے تھے وہ دعا میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. یہ دعا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے, یعنی یا الہی عز وجل ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے معاف فرما. یہ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ دعا بیان کی گئی ہے. حضرت ابو عمر اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آسمانی بجلی چمکتے وقت یہ دعا پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ, یعنی اللہ عز و جل پاک ہے اور اسی کی حمد کی جاتی ہے, اس سے گرنے والی کڑکدار بجلی نقصان نہ پہنچائے گی. تو یہ چند ایک میں نے بجلی کے تعلق سے, اور اس کے لیے کافی معلومات ہے اور صراط و جنان سے بھی اس کو انشاءاللہ تعالی جب پڑھیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو رب نے چاہا تو اچھا خاصا اس میں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. تو میں نے چند چیزیں یہاں آپ کو بجلی کی کڑک کے تعلق سے اور یہ گرج اور چمک اور بجلی جو گرتی ہے اور پھر مزید جو ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی اس کے تعلق سے بھی آپ کو بیان کیا ہے. الغرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک اسلامی دینی تصور ہے، ظاہر ہم اپنے پروگرام میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے تمام تر پہلو آپ کے سامنے اس وقت بیان کیے گئے ہیں۔ تو جب ایسا موقع آئے اللہ تعالیٰ سے عافیت 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 کا سوال کیا کریں، تم بکثرت ذکر کریں، جیسے میں نے حدیث پاک میں آپ کو بیان کیا کہ تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ آپ اس پر ضرور غور کیجئے گا جو بھی میں نے چند باتیں آپ کو بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بجلی کے تعلق سے، جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اس کے تعلق سے میرے پاس کچھ احتیاطی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ البتہ آئیے اس دوران کال لے لیتے ہیں۔
فوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، نگرانی شورا سے عرض کرنی تھی کہ یہ فرمائیے کہ یہ ناگانی آفات و بلیات اور پریشانیاں آتی ہیں، تو ان کی رکاوٹ اور ان سے بچنے کے لیے صدقے کا کیا عمل دخل ہے؟ عموماً جب ہمارے سر پڑتی ہے تو پھر ہم کچھ کرنے کو دوڑتے ہیں، جب عافیت والا معاملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ادھر توجہ نہیں ہوتی، اور بہترین صدقہ کیا یہ ارشاد فرما دیجیے۔
صدقہ ایسی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، کہ بلا یہ صدقے کو نہیں پھلانگتی، یعنی صدقے کی برکت سے بندہ بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ رہی بات افضل صدقہ، تو یہ مختلف اس کی روایتیں ملتی ہیں، گھر والوں پر خرچ کرنے کو بھی افضل صدقہ کہا گیا، اور افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے ناراض رشتہ دار پر جو خرچ کیا جاتا ہے، یہ نفلی صدقہ جو آپ ثواب کی نیت سے دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، صدقہ واجبہ الگ بات ہے، میں صدقہ نافلہ جو رائے ہے خدا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے، صرف پیسے ہی سے تعلق ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی بتانا صدقہ ہے، تو مسلمان کے آگے مسکرائیں گے تو یوں، تو مسلمان کے آگے مسکرائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، نیت اچھی ہو تو۔ اب یہ کہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ صبح کے وقت صدقہ دے دیا کریں، جب جب گھر سے نکلیں صدقہ نکال دیا کریں، اور بعض اوقات کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے جان کا تعلق ہوتا ہے، کہ کوئی بد اللہ نہ کرے کوئی ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جس کی کوئی اس طرح کی تعبیر آتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی جان کے خطرے کے تعلق سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے جان کا ہی کوئی صدقہ دے دے، یعنی بکرا ہے، مرغی ہے، اس طرح کوئی بھی مرغا ہے وغیرہ، اس طرح کوئی جان کا صدقہ دے دے، یعنی خون بہا دے ان کا، وہ رائے خدا میں دے دے اور اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں صدقے کے تعلق سے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دیکھیں اس کا تعلق بہت بڑی رقم سے ہی نہیں ہے، ایک انڈا بھی آپ راہ خدا میں صدقہ کر سکتے ہیں، ایک مثال دے، مٹھی بھر آٹا راہ خدا میں صدقہ کر دیں، ایک کھجور راہ خدا میں صدقہ کی جا سکتی ہے، اب اس کی کیا بظاہر قیمت ہوتی ہے، مگر یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ بعض اوقات ہم پر جب کوئی ایسی چیز آ چکی ہوتی ہے تو ہم پھر اس طرف بھی جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، جب آئی ہے تو بندہ اس طرف چلا جاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور اللہ کی معرفت کی طرف اور رجوع الی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں، لیکن جب راحتوں کے ایام ہوتے ہیں اور سکون کے ایام ہوتے ہیں، وہ جب گھڑیاں ہوتی ہیں، صدقات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ظاہر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی ایک زبردست شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے جو مال دیا اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں، اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں، یہ شکر کا پہلو ہے، اور اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو یہ ناشکری کہلائے گی۔ آنکھ ہے، کان ہے، اس کے علاوہ بہت ساری انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا اور ان نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کرنا اور اس کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنا، خرچ کرنا، یہ بھی ایک شکر کا بہترین پہلو ہے جسے ہم بدقسمتی کے ساتھ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو شکر بھی کرنا چاہیے، اور خاص ان راحتوں کے اور ایاموں میں صدقہ کرنا چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو مشورہ یہ دیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چاہے وہ ایک روپیہ ہی صحیح، آج اس دور میں بازار جس میں ہم جی رہے ہیں ایک روپے کی بازار کو قدر نہیں, فقیر بھی جیسے کہہ سکتے ایک روپیہ نہ لے, ایسے حالات ہیں. تو سکہ بھی 5 روپے کا آتا ہے. تو یوں مطلب کہ ایک مثال دیتا ہوں, 5 روپے کا سکہ ہی آپ صدقے میں نکال کر آپ چلے جائیں, مگر یہ رائے خدا میں دیں. یہ جو بازاروں میں اور روڈوں پر اور گلیوں پر سگنلوں پر جو فقیر آپ کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہوتے ریگولر بیسس کے اوپر, یہ موسٹلی جو ہے نا وہ پروفیشنل بیگر سسٹم ہے, بیکنگ سسٹم ہے. اور یہ مطلب باقاعدہ پیشہ وارانہ پوری مافیا ہے جو سڑکوں پر گلیوں پر دروازوں پر آ کر اور یہ مطلب مانگتے رہتے ہیں. یہ اس پر کافی مرتبہ مدنی چینل پہ بھی کہا گیا ہے اور یہ قانوناً بھی درست نہیں ہے. شرعاً تو ان کا یہ مانگنا جو پروفیشنل پیشہ وارانہ طور پر بھیک مانگتے ہیں, شرعاً بھی یہ گناہگار ہوتے ہیں اور ان کو دینا بھی جائز نہیں ہے. بلکہ ان کی تو مطلب حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. بلکہ آپ تو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ تو گاڑی کے باقاعدہ وہ ہیش اس میں ٹرے کے اندر یا کسی جگہ پر آپ تو سکے رکھتے ہیں یا سگنل پہ جائیں گے کوئی مانگنے والا آئے گا شیشہ اتار کر اس کو ہم دے دیں گے. بھائی کیوں دے دیں گے اس کو, وہ روزانہ وہیں کھڑا ہوا ہے. مستحقین کو دیں جو واقعی حاجت مند ہیں. میں کہتا ہوں گھر میں دے دیں یار, بیوی بچوں پر خرچ کر دیں یہ بھی صدقہ ہے. مستحقین کو دیں, رشتہ داروں کو اس کو دیں, آس پاس پڑوسیوں کو دیں. ان بھکاریوں کو تو خدا را مت دیں, ان کی زبردست حوصلہ شکنی کریں. ان کو بالکل آپ ایک روپیہ بھی نہ دیں, جائز ہی نہیں ان کو دینا. اور ان کے اس کام میں بالکل آپ کو بالکل حصہ دار نہیں بننا چاہیے. نہ دیا کریں, یہ بالکل نہ دیا کریں. پلیز تھوڑا سینس یوز کریں کہ یہ روزانہ یہیں کھڑا ہوا ہے, اس کو کون لے جاتا ہے, کون رکھ کے چلا جاتا ہے جو روزانہ معذور بن کے بیٹھا ہے. چاروں طرف ان کے مطلب کہ وہ ٹھیکے دار شاید کھڑے بھی ہوتے ہوں گے. ان کے سگنل بکتے ہیں, ان کی باقاعدہ بونیاں ہوتی ہیں. یہ میری جو معلومات ہے کہ یہ ایریاز ہیں, یہ اتنے اس کا اتنا مانا ٹھیکہ ہے, اس کا اتنا مانا ٹھیکہ ہے, یہ ٹھیکوں پر بک رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. سو پلیز اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ظاہر ہے ہمارا یہ سبق آموز خبریں, یہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے, لہذا کسی بھی ایک ٹاپک کو میں کنٹینیو لے کر نہیں چل سکتا. میں نے کچھ بجلی کے تعلق سے, آسمانی بجلی کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں عرض کی ہیں. اس میں کچھ احتیاطیں ہیں, احتیاطوں کو بھی سامنے رکھیں کہ جب آسمانی بجلی وغیرہ کا معاملہ ہو. زیادہ یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے, ایسا موسم بنا ہوا ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ کوشش کیجئے کہ ہاتھ میں فون نہ ہو, اس طرح گھر کی ٹیلی فون لائن اور تاروں سے دور رہیں, کیونکہ دھات سرکٹ مکمل کر کے بجلی گزرنے میں مدد ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا یہ احتیاطی چیز ہے. اچھا ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے, سب کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہے, مگر چونکہ اس طرح کے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یوں کچھ ریسرچ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی وجوہات بن سکتی ہیں. تو احتیاطاً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اسی طرح بجلی سے چلنے والے دیگر جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان سے دور رہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر آسمان پر بجلی کڑک رہی ہو تو درخت کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کیجئے, کیونکہ درختوں پر آسمانی بجلی گر سکتی ہے. اس طرح لوہے اور فولاد کے جنگلوں, دھاتی جو آئرن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, جو پائپس ہوتے ہیں, ان سے بھی دور رہیں. تو یہ چند چیزیں احتیاطی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اور مزید آپ معلومات مل جاتی ہیں اگر اس کی تھوڑی سی آپ تحقیق اور تفتیش کرنے کے لیے جائیں گے. تو اب چونکہ ایک ہی ٹاپک پہ میرا بہت طویل ہو جائے گا اور آگے میرے پاس موضوعات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سے عافیت عافیت اور بس عافیت کا سوال ہے. ایک پرابلم ہے جو میں دوسرے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں. ایک پرابلم ایسا ہے جو واقعی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ایک تھوڑا سی عبرت اور سبق کے لیے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. میرا یہ ٹاپک طلاق سے ریلیٹڈ ہے. یوں تو طلاق سے ریلیٹڈ کئی چیزیں میں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں بیان کی گئی ہیں, دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام ہو یا مدنی مذاکرہ ہو, دیگر ہمارے پروگرامس ہوں, طلاق سے بچنے کے تعلق سے اور طلاق کے نقصانات کے تعلق سے کافی باتیں آپ کو بیان کی گئی ہیں. لیکن ایک عجیب و غریب معاملہ جو پچھلے دنوں یو کے میں ہوا ہے اور وہ رپورٹ ہوا ہے, باقاعدہ پورا رپورٹ بنی ہے, وہ واقعہ کیا تھا بڑی عبرت کی نظر سے دیکھیے گا. مطلب عبرت کی نظر سے کہ یار कहाँ खो गए, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ये जितनी भी हम आपको वीडियोस वगैरह या खबरें दिखा रहे हैं, इसमें सबक और इबरत है। हाँ, सबक और इबरत है, बल्कि यूं समझे कि हम तो आपका माइंड ही चेंज कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ही बदल रहे हैं। अच्छा यार, इसको इस कॉन्सेप्ट, जैसे बिजली के ताल्लुक से, बिजली गरज चमक के ताल्लुक से हमको तो आपने थोड़ा सा हमारा बयान सुना कि वो पूरा कॉन्सेप्ट तब्दील कर देता है। और शरीयत और दीन का एक अपना मिजाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इख्तियार करना चाहिए। तलाक से रिलेटेड आइए एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं।
तलाक की कानूनी जंग लड़ते लड़ते जोड़ा कंगाल हो गया। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन का शुमार तलाकों के लिए महंगे तरीन शहरों में होता है। कानूनी पेचीदगियां और वकला की भारी फीस अगरचे अमीर जोड़ों के लिए कोई माना नहीं रखती, मगर लंदन का एक जोड़ा अपनी तलाक की कानूनी जंग लड़ते लड़ते कंगाल हो गया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जोड़े के दरमियान 2 साल की तवील और थका देने वाली कानूनी जंग का इख्तिताम हुआ और अदालत ने तलाक की मंजूरी दे दी। समाप्त करने वाले जज ने कहा कि एक दूसरे से अलग होने और एक दूसरे से जीतने के चक्कर में जोड़े ने अपनी तमाम मिल्कियत गंवा दी। जज का कहना था कि जोड़े ने 22 साल तक शादीशुदा जिंदगी गुजारी और इनके 3 बच्चे हैं और इनकी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी, मगर फिर अचानक उन्होंने तलाक का फैसला किया और जोड़े की जिंदगी से मालूम होता है कि दोनों ने तलाक के फैसले के बाद कर्ज लेकर जिंदगी गुजारने की कोशिश की और अब दोनों पर 6 लाख पाउंड तक कर्ज हो चुका है। तलाक का फैसला देने वाले जज ने बताया कि जोड़े के पास वाहिद मुश्तरका मिल्कियत एक घर बचा था, जिसको फरोख्त करके 6,30,000 पाउंड की रकम हासिल हुई है, जो दोनों में मुश्तरका तौर पर तकसीम की जाएगी। अदालत के मुताबिक घर फरोख्त से हिस्से में आने वाली रकम से दोनों अपने कर्जे उतारने समेत वकला की फीस अदा करेंगे और यूं हकीकी तौर पर दोनों के पास 2 साल की जंग के बाद महज 5,000 पाउंड ही बचेंगे। जज ने जोड़े की तलाक पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही इस पर भी अफसोस किया कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में जोड़े ने किस कदर खुद को तबाह कर दिया। तलाक लेने वाले जोड़े की शनाख्त खुफिया रखी गई, ताहम इनकी तलाक पर सब ने अफसोस का इजहार किया।
सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहां थे, कहां पहुंचे, देखिए आप। यानी बहुत नुकसान आते तलाक है, लेकिन ये भी अजीब और गरीब आपने एक समझे पूरा एक वाकया हुआ है कि सब लूट गया, सब उजड़ गया, खत्म हो गए। तलाक के नुकसान ही नुकसान आते, और तलाक होती है आपस की ना इत्तेफाकी और झगड़ों की वजह से, ज़हनी मांगी नहीं होती, ये बासोकत बुनियादी चीज़ें बनती हैं। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि इसका एक बुनियादी सबब जिसे बयान किया जा सकता है वो हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त है। अरे अगर खुदा ना खास्ता एक स्टेज पर कोई नौबत आ ही जाए, ठीक है, ये मैं बिल्कुल मैक्सिमम बयान कर रहा हूँ कि अब सिवाय इसके कि तलाक हो, जुदाई हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट डिवोर्स, ओके। तो ये आपको मैं बयान करूं कि उस जब ऐसी कोई नौबत आ जाए तो कम से कम डैमेजेस की तरफ जाएं, कम से कम नुकसान की तरफ जाएं कि वो कौन सा वे इस्तेमाल किया जाए जिससे कम से कम डैमेजेस हो, कम से कम नुकसान हो, रिलेशनशिप की कम से कम इतनी अहमियत और हैसियत तो रहे कि आगे की जिंदगी ये गुनाहों से बचकर गुजर सके, खानदानों को किस तरह मतलब कि इसको मैनेज कर सके। क्योंकि होता यह कि समटाइम जब इस तरह तलाक हो जाती है तो उनके बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो तलाक तो मियां बीवी में हुई है ना, बच्चे को थोड़ी को तलाक हुई है कि बच्चे को बच्चे को क्या तलाक होगी। अब वो आधा इधर आधा उधर, इतने वर्षों यहां इतने वर्षों वहां, इसलिए मैं अमूमन आपको अर्ज करता रहता हूं कि जैसे शादी से पहले ना बंदा किसी और माइंड पे जीता है, जब शादी हो जाती है तो बीवी शोहर के लिए और शोहर बीवी के लिए सोचना शुरू कर देता है, मगर जब इनका बच्चा हो जाता है ना तो ये दोनों मिलकर बच्चों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी आपस का डिस्प्यूट पैदा होता है तो फौरन देखिए कि यार हम तो चलो मिसाल के तौर पर कुछ रिलैक्सेशन मोड में चले जाएंगे या चलो फारिग हो जाएंगे और ये इधर में उधर, तो बच्चा किधर। और जब फिर दुनिया में जायदादों के झगड़े, पैसों के झगड़े, तकसीम के बाद फिर जनाब इसका इतना, ये तो बहुत सारे इश्यूज हैं। बेहतर नहीं है कि आदमी कंप्रोमाइज कर ले, बर्दाश्त कर ले, एक दूसरे को मतलब कि इग्नोर करे और तलाक की तरफ ना जाए। हो सकता है इस वक्त कई ऐसे शायद घर में फैमिली मेंबर्स जोड़े शायद देख और सुन रहे हो कि जो बहुत ही एक सिचुएशन में हो कि बस नहीं बनती, बना ले भाई, क्यों नहीं बनती, झगड़ा है किस चीज का, उससे बच्चा संभालने में गलती की, शोहर ने डांट दिया, चीखो पुकार हो गए, यार ये जबान चलाती है, तो आपका हाथ भी तो चलता है, जबान चला तो आप हाथ चलाते हो, दोनों गलत है ना, उसको जबान चलाने की इजाजत है ना आपको हाथ चलाने की इजाजत है, ना आपने बदतमीजी करने के लिए शादी की थी ना आपने मारने के लिए शादी की थी, वो आपका शोहर है और यकीनन उसके बहुत सारे हुकूक आपके जिम्मे हैं, तो इसी तरह ये आपकी बीवी और उसके भी कई हुकूक आपके जिम्मे हैं, ना आप उस पर जुल्म करें ना वो आप पर जुल्म करे, एक दूसरे के औकात कार की रियायत रखें, एक दूसरे के एहसास को समझिए, एक दूसरे की हाजत और जरूरतों को समझने की कोशिश करें कि ये है क्या और किस तरह हम एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो तो प्लीज बैठ जाएं, जैसे इस पर बैठ जाए बोले बात क्या है, मैं इसमें ज्यादातर पता है बोलता रहता हूं शायद आपको कि इसमें मेरा इस्लामी भाई बेहतरीन किरदार अदा करे, यार आप मर्द हो, यू आर मैन, बी मैन, आप बेटे बताओ प्रॉब्लम क्या है, अच्छा पहले आप बताए मुझसे क्या आपको शिकायत है, आप डायरेक्ट सवाल कर लें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आप सवाल कर लें अच्छा बताए मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको, और जब आपको ये आपका शोर पूछे ना प्रॉब्लम क्या है तो आप भी लड़ना शुरू नहीं कर दीजिएगा कि नहीं बस छोड़ो, नहीं क्यों छोड़ो भाई, छोड़ने के लिए तो नहीं शादी किसी के, छोड़ो नहीं छोड़े भाई, नहीं छोड़ेंगे, और आप भी गुस्से में नहीं आना, गया जब पूछ रहा हूं एक बार मोहम्मद से तो बता क्यों नहीं देती हो, तो ये फिर क्या फायदा होगा, तो ये पूछो क्या बात है, अब आप देखिए यार उसकी शिकायत वाजिबी है, उसकी शिकायत वाजिबी है, मिसाल के तौर पर आजकल जैसे मेरी मालूमात के मुताबिक रिसर्च भी है, ये मैं मतलब अपने घर घर की खाली बातें जैसे घड़ी भी बातें नहीं कर रहा, रिसर्च भी है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल है ना, इसने बहुत सारे घरों को इस पर डिस्टर्ब किया हुआ, अब आदमी देर देर तक वीडियो गेम्स खेल रहा है, अब शोर है भाई, शोर हो यार भाई, लड़के को जिसको ना छोकरे लड़के जिसको बिल्कुल बैचलर किस्म के कोई मतलब के वो टीनेजर थोड़ी हो आप, क्या आपको इतना ज्यादा समझाया जाएगा यार, आफ्टर यू आर मैरिड पर्सन, शादीशुदा आदमी हो, शादीशुदा जिंदगी गुजारे ना आप, ये कोई वीडियो गेम खेलने की आपकी उम्र और जिंदगी है, वे तो वैसे ही कुछ भी नहीं है, नहीं खेलनी चाहिए, मैं आपको आपके एज के हिसाब से चोट कर रहा हूं, क्लोज करें इसको यार, टाइम दे, सो जाएं, पढ़े लिखे, उसको लगे कि हाँ मैं एक समझदार मैच्योर्ड और एक मतलब कि एक सेंसिबल मर्द की बीवी हूं, जी हाँ माफ कीजिएगा गुस्से में मत आइए, एक एहसास होता है, वो कभी बीवी वो अपने मतलब बनाओ सिंगार मेकअप कपड़े ये वो उल्टी सीधी हरकतें, तो जना सोशल मीडिया तो आप इसलिए शादी की थी कि आप सोशल मीडिया पे लगी रहेंगे, बहुत शौर है आपको, उसको टाइम तो दें आप, तो मेहरबानी करें सबसे पहली चीज अपनी जबान की हिफाजत करें, इंशाअल्लाह आपने अगर अपनी जबान बचा ली तो समझिए कि 90% आपके डिस्प्यूट खत्म हो गए, आप सोचिए कि यार ये मेरा बोलना बदतमीजी बदअखलाकी कोई मतलब के मैनर से हटकर बात तो नहीं होगी, ये मैं आप दोनों की बात कर रहा हूं, मैं बताऊं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर राइट लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम है ना वो भी आप अल्लाह ने चाहा तो दोनों मिलकर हैंडल कर लोगे, या यू कैन हैंडल इट, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, आप दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर, इस वक्त मैं आपके राइट लेफ्ट पर कोई डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप दोनों की बात करता हूं जो इस वक्त आप आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाकर बैठे हुए, ओ गरज चमक सब, अभी थोड़ी देर पहले गरज चमक की बातें हुई थी, इसमें एहतियात करनी पड़ती है, हाँ, और ये कोई एक का दिन में नहीं हो जाता, अब आहिस्ता आहिस्ता लड़ते रहे, मिसा के तौर पर मजबूत से मजबूत दीवार पर मैं रोजाना थोड़ा 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 मारता ही रहूं, थोड़ा मारता ही रहूं, थोड़ा मारता ही रहूं, आहिस्ता आहिस्ता दीवार में से मिट्टी गिरेगी, गड़ा होगा गड़ा होगा गड़ा होगा, फिर एक दिन आएगा कि हल्का सा धक्का भी दीवार गिरा देगा, जी हाँ यही प्रॉब्लम, यही तो समझने की जरूरत है, कि कभी महीने में 15 दिन में एक हफ्ते में कुछ ना कुछ बदतमीजी का बदअखलाकी का नाइतफाकी का अथोड़ा हमारे इस निकाह के और इस शादी के रिश्ते की दीवार पर पड़ता ही चला जाता ठा ठा दो हाथ लड़ औरत ने मारे तो चार हाथ उसी रिश्ते की दीवार पर मर्द ने मारे और एक दिन आता है कि फिर हल्का सा झटका दीवार गड़ा फिर लोग कहते हो यहाँ अचानक थोड़ी को तलाक उनकी उमूमन हो जाती है इसके पीछे स्टोरी होती है। अब किसको गरज यार पड़ोसी इन्वॉल्व हो फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो खानदान इन्वॉल्व हो पैसा इन्वॉल्व हो आप इस वक्त कोर्ट में जाकर पूछे वकीलों के पास हजारों केसेस तलाकों के हजारों केसेस तलाकों के खुला के हजारों केसेस हैं कैसे हो जाते हैं ये सारे भाई शादियां पहले भी होती थी घर पहले भी चलते थे मियां बीवी में मसाइल पहले भी होते थे तलाकें इतनी नहीं होती थी ना नेवर। एक तो इसके कुछ रीजंस जिस पर मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूं लिहाजा मेरी आज आपसे एक बार फिर दरखास्त है मेहरबानी करें डिफ्यूज कर दें अपने इश्यूज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे मिसाल के तौर पर आप उस झगड़े की बेस पर देखें चलो आप कहे यार इसने मुझे यू बोला वो बोलेगी इसने मुझे यू बोला और दोनों ने गलत बोला और बहुत एक्सट्रीम गए बहुत ऊपर तक गए मगर मैं आप दोनों को पूछता हूं कि इसने जो यू बोला सही यू बोला बट रीजन क्या था वो बेसिक रीजन जिस पर ये सारा मामला उठा वो बेसिक रीजन पता है क्या था वो पानी लाने में देर हो गई थी पानी लाओ उसने कहा ला रही हो ना ये कौन सा जवाब है। अब ये जनाब ये हुई बेस ये फिर इसके बाद बना पूरा वो बलून बन गया इसका पूरा यार बच्चे को संभालो ना यार मैं काम नहीं करूं मैं ये नहीं करूं वो बोलेगी आपका बच्चा नहीं है बदतमीजी नहीं करो अरे भाई तो सही तो बोली आपका बच्चा नहीं बोला हाँ मेरा भी बच्चा था संभाले मेहरबानी करे मैं काम कर लूं यार तो क्या आ रहा है ये कुछ झगड़े खाने पर पीने पर गर्म पर ठंडे पर मिर्ची पर नमक पर मसाले पर बिजली बंद करने पर बिजली खोलने पर मैं सोया हुआ हूं लाइट ऑन कर देती हो वो भाई तो क्या करे अंधेरे में आकर गिरे सोने के टाइम सो जागने के टाइम जागो अब होगा ये कि आपके सोने का टाइम है बीवी बच्चों को उठने का टाइम है उनका रेस्ट का टाइम हुआ वो बिचारी मतलब कि पूरा दिन काम करके थक गई अब वो बोले कि मैं 2 घंटे या 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करूं तो साहब बहादुर उठ के मैदान में आए जनाब आप खाना दो तो ये इतनी डिफरेंट रूटीन लेकर चलेंगे तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे आप अपनी फैमिलीज को कैसे चलाएंगे आप ये चीजें इसको नोटिस लें फिर आप वो ठीक है औरत की घरेलू एक जिम्मेदारियां तो है ना जिम्मेदारी है औरत की इसको आप इग्नोर ना करें ना इसको आप बिल्कुल आप इसको डिनाई भी ना करें मेरी इस्लामी बहने मैं अपनी बहनों से बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी है वक्त पर खाना तैयार हो कपड़े हैं प्रेस होता है स्त्री वगैरह की चीजें होती हैं शॉक्स होते हैं अपनी जगह पर होते हैं हर चीज अपनी जगह वो कहाँ रखे क्योंकि ये घरेलू जिम्मेदारी है ना वो भी तो दिन रात 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करके कमा कर ला रहा है ना मेहनत कर रहा है चार आदमियों की बातें सुनता है धूप में जलता है सब कुछ करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी भी तो अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना चीजें अपनी जगह पर हो किचन में जाए तो पूछे कि भाई चाकू कहाँ रखे तो वो इधर रखी हुई है चम्मच वहां रखी है गिलास मिल नहीं रहा है फ्रिज में पानी नहीं है कूलर में पानी नहीं है तो जना वो चीज नहीं है तो ये चीज नहीं है तो ये ढूंढे तो वो ढूंढे तो ये परेशानी तो चाबी कहीं रख दी तो मोबाइल कहीं रख दिया तो औरत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि शौहर के आने जाने के उठने जागने के जो वक्त हैं और उसके पहनने ओढ़ने के जो मामलात हैं इन तमाम तर चीजों को वो लुक आफ्टर करे वो भी तो आप बोलो तबीयत ठीक नहीं तो आप भी 2 गोली खाकर काम करते हो तो वो भी 2 गोली खाकर कारोबार पर काम पर नौकरी पर चला जाता है उसको ये टेंशन है कि मेरे घर के यूटिलिटीज भरने हैं मैंने ये भरना है मैंने वो भरना है बच्चों की फीसें हैं मेरे खराजात हैं उसके लिए वो दौड़ भाग कर रहा है आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब ये घर पर आए तो इनको मैं सुकून दूं राहत दूं आसानियां दूं और इनकी चीजों की हिफाजत करूं इनको चीजें इनकी जगह मिल जाए तो इंडोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आउटडोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन मर्द के लिए मैं इस्लाम भाई के लिए आपकी आउटडोर के साथ साथ कुछ इंडोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं कि चीजों को फेंके नहीं मुंतशिर ना करें बेतरतीब ना रखें आप कुछ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें उठने जागने के हवाले से बच्चों को बैठकर टाइम दें बीवी को टाइम दें फैमिलीज को टाइम दें फिर अगर माँ बाप है तो उनको वक्त दें वॉट एवर जो चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा आई थिंक कि मैंने बहुत सारी चीजों को कंक्लूड करके कोशिश की है कि मैं आपके सामने रखूं और दोनों तरफ से होने वाले कुछ इश्यूज को और दोनों की कुछ जिम्मेदारियों को बयान करने की कोशिश की है। अगर इस तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अगर आप अपने आप को फैमिली के साथ लेकर चलते हैं, मेरी अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रब की रहमत शामिल रही तो रेशो ऑफ डाइवोर्स ये बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर अगर कुछ हो जाए, मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता मर्द ने तजावुज किया, चीखा चिल्लाया या कुछ इस तरह की बातचीत की, मैं अपनी बहनों से मेरी बेटियों से अर्ज करूंगा आप इमीडिएट खामोश होकर साइड में हो जाए। देखें जब हवा और यूं सैलाब और यूं आ रहा तो आदमी खड़ा नहीं हो जाता, वो उसको उड़ा के ले जाता, अक्लमंद आदमी दीवार से लग जाता है कि चीजें निकल जाएं, उसको निकल जाने दें। इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर बीवी आपे से बाहर हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्ट करती है, बदतमीजी करती है, बदअखलाकी करती है, हो जाता है, नहीं करनी चाहिए, ना उसको करना चाहिए ना उसको करना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो आदमी को अपने ईगो में नहीं आ जाना चाहिए, मैं मर्द हूं, मुझे आपको क्या जरूरत है ऐलान करने की, सब अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं, तो मर्द है तो फिर अपनी उसको भी तो देखें ना कि आप फिर क्यों लड़ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि औरत से लड़ना, अकलमंदी करें, आप भी उस टाइम पर थोड़ा सा किनारा पकड़ लें, गर्म पतीली चाहे वो पकड़ेगा आप पकड़े, हाथ भी जलेगा बर्तन भी टूटेगा। हैंडल करना सीखें, सिचुएशन को हैंडल करें। जब ये दोनों मियां बीवी इस कदर खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे ना कि यार किसी के साथ भी खुदा ना खास्ता कोई बशरी तकाजा, तबीयत का तकाजा, कोई ऐसी चीज हो गई मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, बीमारी के ताल्लुक से, तो यार मैं इग्नोर कर लूंगा यार, आफ्टर ऑल यार शी इज माई वाइफ, शी ही इज माई हस्बैंड, यार मेरा शौहर है, मेरी बीवी है, क्यों लड़े हम आपस में, इंशाअल्लाह रब की रहमत शामिल आ रही। अब देखिएगा आपके आपको जीने का लुत्फ आ जाएगा, अरे घर जाएंगे आपको मजा आएगा। लेकिन ये जो मैंने चीजें बयान की हैं, अगर ये आपके घरों में नहीं है तो मुझे बताइए, जिनके घरों में डिस्प्यूट है या इसके अलावा प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अल्लाह आपको और मुझे फितरों से महफूज फरमाए और इन बलाओं और आफतों से बचा कर रखे और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत पैदा करे। ना 100% तवक्को के मुताबिक किसी औरत को शोहर मिलता है, न 100% तवक्को के मुताबिक किसी शोहर को बीवी मिलती है, ये याद रखिएगा। कंप्रोमाइज करना सीखें, अच्छी आदतों को इख्तियार करें, बुरी आदतों को इग्नोर करें, जहां शरीयत ने तरबियत करने के ताल्लुक से आपकी जिम्मेदारी दी है वहां अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करें। इंशाल्लाह तलाक जैसी आफत से रब ने चाह तो बच जाएंगे, रब ने चाह तो बचेंगे, मगर आपको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आप अभी दोस्ती भी कर ले, यार चलो आप इतना बोला है इमरान, चलो आज से दोस्ती, आज से अपना झगड़ा बंद, कोई झगड़ा नहीं करेगा, आप वो वादा कर ले, नियत कर ले सच्ची कि मैं आज के बाद जबान नहीं चलाऊंगी। खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर हाथ चलाने की या आप में भी जबान चलाने की या आप में भी एग्रेसिव वाली ऐसी आदत है तो फिर आप भी आज पक्की नीयत और वादा कर ले कि इंशाल्लाह मैं भी आज के बाद केयर करूंगा और हम दोनों इंशाल्लाह एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करेंगे। देखिए बीवी के लिए शोर और शोर के लिए बीवी दोनों का लिबास कहा गया है और जब बाहर के लोग इन्वॉल्व होंगे ना तो आपको एक दूसरे के राज खोलने पड़ेंगे और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे मामला होता है, बहुत ही तकलीफ। इस नौबत को मत आने दीजिएगा और अपने बच्चों को भी देखिएगा, बच्चे ना भी हों तब भी देखिए कि क्यों आखिर ये काम करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आइए एक और सुलगता हुआ मौजू, और वो सुलगता हुआ मौजू है ही सुलगता हुआ, वो सुलगाया जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद सिगरेट से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुनिया में बढ़ती हुई जो खराबियां बुराइयां हैं और जो इसके जो मनफी असरात हमारी सोसाइटी पर मुरतब हो रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बुराई, बहुत बड़ी खराबी, बहुत बड़ी खामी और बहुत ही जबरदस्त मतलब इसको कहते हैं कि एक मैनर से हटकर आदत है, वो सिगरेट पीना। आइए उसके कुछ आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाते।
हाल ही में होने वाले एक गैर मुल्की मुताले में ये बात सामने आई है कि दहाइयों से जारी तंबाकू नोशी पर कंट्रोल की पॉलिसीज के बावजूद तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। दुनिया भर में सिगरेट नोशी में मुब्तला अफराद की तादाद 1.5 अरब से ज्यादा हो गई है। रिसर्च में बताया गया है कि हर 10 अमवात में से एक की वजह सिगरेट नोशी होती है। दुनिया में हर साल तंबाकू नोशी से 70 लाख से ज्यादा अमवात होती है। सिर्फ इंग्लैंड में सालाना 80,000 अफराद सिगरेट पीने के सबब हलाक हो जाते हैं, जबकि योमिया तादाद कमोबेश 200 बनती है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर तंबाकू की मार्केट की मालियत 770 अरब डॉलर है। दुनिया भर में तकरीबन 18 अरब सिगरेट बिकते हैं, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 18 करोड़ सिगरेट बिकते हैं। मुहक्किकीन ने खबरदार करते हुए बताया है कि हर 4 में से एक मर्द और हर 15 में से एक औरत तंबाकू नोश है, जबकि नौजवानों पर की गई एक तहकीक से मालूम हुआ है कि हर 5 में से एक नौजवान 17 बरस की उम्र से सिगरेट नोशी शुरू कर देता है। सिगरेट नोशी की आदत सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि इसका शिकार औरतें भी हैं। सिगरेट नोशी की शौकीन औरतों की ज्यादा तादाद अमूमन यूरोपीय मुल्कों में मिलती है। रूस में खवातीन के तंबाकू नोशी करने में 4% इजाफा हुआ है और ऐसे ही रुझान अफ्रीका में भी देखे गए। डेनमार्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा सिगरेट नोशी करती हैं। सिगरेट नोशी से कम अज़ कम 10 साल जिंदगी कम हो सकती है। तंबाकू नोशी के नतीजे में फेफड़ों के कैंसर से 84% तक मौत वाके होने के खदशात बढ़ जाते हैं। वो नौजवान जो शराब भी पीते हैं और सिगरेट भी, उनकी शरियानों को 17 साल की उम्र ही से वाजे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हर साल तंबाकू नोशी और इससे होने वाली बीमारियों की वजह से कमोबेश 1,60,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। मौशरे में सिगरेट नोशी करने वाले फर्द के साथ दीगर अफराद भी यकसा तौर पर मुतासिर होते हैं। तंबाकू नोशी की सनद का हदफ नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, क्योंकि ग्लोबल यूथ टोबैको के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 13.3% लड़के और 6.6% लड़कियाँ जिनकी उम्र 13 से 15 साल है तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे सिगरेट पीने वालों के दरमियान रहकर बड़े होते हैं, इस बात का कवी इम्कान है कि वो आगे चलकर सिगरेट नोश बने। तहकीक दानों का मानना है कि मीडिया सोसाइटी में तब्दीली लाने का जबरदस्त जरिया है। नौजवानों में तंबाकू नोशी की आदत दरअसल नशे की जानी पहली सीढ़ी है, इसीलिए तंबाकू नोशी कम करने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है। शोबा नफ्सियात के माहिरीन के मुताबिक सिगरेट में 4,000 केमिकल्स होते हैं, 250 के करीब इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसान दे पाए गए हैं और 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर का बाइस बन सकते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि कार से खारिज होने वाले धुएं में होता है, ब्यूटेन होता है जो कि लाइटर के पानी में शामिल होता है, और आर्सेनिक अमोनिया और मेथानोल रॉकेट के ईंधन में इस्तेमाल होते हैं। ये केमिकल्स इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन हैं।
मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये एक सुलगता हुआ मौजू है और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो वाकई सुलगाया जाता है, जलाया जाता है, और इसके इतने इस वक्त आपको नुकसान है। दुनिया का शायद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसका एक फायदा बयान कर सके, नहीं, इसके नुकसान ही नुकसान है। ये वो प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है ना, वो कंपनी बताती है कि इससे कैंसर हो जाएगा, इससे मौत हो जाएगी। ये इसकी प्रोडक्ट के ऊपर ही इसके नुकसान लगे हुए हैं, लेकिन देखिए दुनिया में इसकी तादाद बढ़ रही है और नफ्सियाती तौर पर लोग इसके ज्यादा यूज कर रहे हैं। और इसमें भी डेफिनेटली बहुत सारी चीजें, सोबत भी है और मीडिया का भी किरदार है जो इसको बहुत ज्यादा प्रोमोट कर रहा होता है। अल्लाह ताला आपके मेरे हाल पर रहम फरमाए और इस बुराई से भी अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम पूरी उम्मत को महफूज फरमाए, आपकी मेरी औलादों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बहुत नुकसान आपने अभी इसके डॉक्यूमेंट्री में देखे, क्या अब भी सिगरेट नहीं छोड़ेंगे? अब ये देखकर तो यार पक्का नियत कर लो, घर वालों जरा समझाओ यार, छोड़ देंगे ऐसे लड़के नहीं समझाना। अभी तो पी नहीं होगी तो गुस्सा आ जाएगा, नॉर्मल आप ही नियत कर लो ना, छोड़ो। तो फैमिली भी तो डिस्टर्ब हो रही है आपकी, आपके धुएं से कितने घर में प्रॉब्लम्स हो रहा है, ना करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, तबलीग दीन करने के लिए, अपने बीवी बच्चों की सही इनकी तरबियत और इनकी किफालत करने के लिए सेहतमंद रहें और नुकसानदेह चीजों से खुद को प्लीज बचा कर रखें। और ये इस कदर क्राइसिस के टाइम में आप देखें, अरबों रुपए की अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और अरबों रुपए की सिगरेट खाली पाकिस्तान में बिकती है, दुनिया में ना जाने सिगरेटों का क्या हाल है। और ये मईशत की बात कर रहे हैं हम, अगर ये सारी दुनिया के सिगरेट पीने वाले अगर ये सिगरेट के पैसे बचा ले बताएं मईशत को कितना भला हो जाएगा, आपकी खुद अपनी आमदनी कितनी हो जाएगी, इनकम कितनी प्यारी है। आइए कुछ डॉक्टर साहब के भी व्यूज सुनते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस ताल्लुक से।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सगीर हुसैन है, मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल सिगरेट स्मोकिंग का एक रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से सिगरेट स्मोकिंग की प्रमोशन की जाती है और फ्रीली अवेलेबल है हर जगह पे, तो उसकी वजह से आम नौजवान और हर उम्र के लोग इसमें सिगरेट नोशी से मुतासर हो रहे हैं, और क्या कहते हैं कुछ लोग शौकिया पी रहे हैं और आखिर में फिर वो मजबूरी मतलब एक बन जाती है, जैसा कि लत लग जाती है तो वो फिर सिगरेट कंटिन्यू रखते हैं। सिगरेट के इंसानी जिस्म पर बहुत असरात होते हैं, एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट जैसा कि हम लोग अमूमन देखते हैं सिगरेट की वजह से पुरानी खांसी की बीमारी हो जाती है, जिसको हम अपनी जबान में COPD कहते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े सुकड़ भी जाते हैं, फूल भी जाते हैं, लंग डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसके अलावा सबसे जो डेंजरस चीज़ है जो कि सिगरेट पीने की वजह से होती है वो लंग कैंसर है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है हमारे सिगरेट पीने वाले मरीजों में। हम अमूमन अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मरीज देखते हैं जिनको के कैंसर होता है या COPD पुरानी खांसी डेवलप कर लेते हैं, वो फिर ताहयात बीमार दवाओं के साथ चलते रहते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ उनको रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डिक फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उनका पूरा जो क्या कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म और बॉडी सिस्टम अफेक्ट होता है। तो मेरी आप लोगों के सबके लिए यही सजेशन है कि अपनी हिफाजत कीजिए, सिगरेट से दूर रहिए, और न सिर्फ खुद बल्कि आप जो सिगरेट पीते हैं उससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। एक तो आप खुद पी रहे हैं जिसमें निकोटीन है जो कि अंदर जाता है, और वो अंदर जाके जब बाहर आप छोड़ते हैं तो अगर आपने अंदर चंद जरासीम लेके गए हैं तो आप बाहर हजारों की तादाद में दूसरों को देते हैं, तो वो आप अंदर कुछ लेकर जाते हैं और उससे कई गुना ज्यादा अपने अगले जो दूसरा बंदा है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो आपके साथ बैठा हुआ आपका ऑफिस कोलीग है, आपका दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब इससे मुतासिर होते हैं, उनमें भी सांस की, दिल की और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और खास तौर पे कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अपने आप को बचाइए, अपने रिश्तेदार अजीजों कारीब को बचाइए, और सिगरेट मत पीजिए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करे कि हम इस बुराई से खुद को बचाने में कामयाब हो जाएं। सिगरेट के ताल्लुक से मैं आपको एक मोटिवेट करता चलूं कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आपके जिस्म पर बड़े मुस्बत यानी पॉजिटिव इसके असरात मुरतब होते हैं, और वो क्या है कि 20 मिनट बाद जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो 20 मिनट के बाद आपके हाथ पैरों का दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, 8 घंटे बाद आपका जिस्म बेहतर अंदाज में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, जब्स करने लगता है। आफ्टर 24 आवर 24 घंटे बाद आपको हार्ट अटैक होने के खदशात कम होने लगते हैं। 48 आवर्स के बाद आपकी सूंघने की सलाहियत और चखने की सलाहियत बेहतर होना शुरू हो जाती है आफ्टर 48 आवर्स ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेज। और 72 आवर्स के बाद यानी 72 घंटे के बाद आपके फेफड़े साफ होना शुरू हो जाते हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 3 डेज। अच्छा, 1 हफ्ता अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो आप में उसको हमेशा के छोड़ने की सलाहियत 9 टाइम बढ़ जाती है। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा यार कैसे सिगरेट छोड़ो, और वो एक प्रेशर एक परेशानी सी हो जाती है आपको, ये होती होगी। मुझे थोड़ा सा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका पर्सनली एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली तलब ही होती होगी कि आदमी चाहने के बावजूद भी नहीं छोड़ पाता, लत है, अल्लाह नजात नसीब करे। मगर 1 हफ्ता अगर आप छोड़ते हैं तो आपके अंदर 9 टाइम एक ताकत पैदा हो जाती है कि आप इसको छोड़ सकें। अच्छा, 2 हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस लेने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो रही है। आफ्टर 1 मंथ 1 माह बाद आप अपनी तवानाई को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे, और 3 माह बाद ऑलमोस्ट 92 डेज आपका खून का दौरानिया बहुत बेहतर हो जाएगा और 6 माह बाद आपके जो स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, खिंचाव होता है, उसको छुटकारा पा लेंगे ना, आपको शायद थकन नहीं लगेगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपके फेफड़े बलगम इन्फेक्शन से काफी हद तक आप महफूज हो जाएंगे और 1 साल बाद आपके फेफड़े मुकम्मल सेहतमंद अंदाज में काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सिगरेट से रिलेटेड कुछ खबर थी जो आप तक हम पहुंचाना चाहते थे और अल्लाह करे कि इस प्रॉब्लम से भी आपको और जो इसमें मुब्तला हैं सबको निजात मिले और आप और हम सब इससे बचे रहें, अल्लाह हिफाजत भी अता फरमाए। अब ये सिगरेट ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नशे का अगर किसी को आदि बनाना हो उसको पहले सिगरेट ही वाले को पकड़ा जाता है कि इसको ये सिगरेट पीता है, इसको इस तरह की चीज दे दो। तो आप खुद को बचाइए, सिगरेट पीने वाले दोस्तों से भी दूर रहें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जो स्मोकर्स हैं उनसे दूर रहें, पीते नहीं है, कम से कम उनका धुआं ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह आप दीगर इस तरह की जो सोबतें और माहौल बनते हैं इनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है? करेंगे माशाल्लाह। जी कॉल्स हैं
सिरगट के हवाले से, अभी आपने जो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई तो मेरे जहन में एक बात आई कि सिरगट की डब्बी के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, तो इसके बारे में किसी ने बहुत प्यारी बात की, जो पहले दिन ही से खराब है तो उसकी क्या एक्सपायरी डेट लिखी जाएगी? यानी कि जो खराब ही खराब है तो एक्सपायरी डेट तो उसके लिए होती है ना कि जो पहले ठीक हो इतनी मुद्दत के बाद वो खराब हो जाएगी, इस वजह से सिरगट की डब्बी पर कहीं भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती।
चले आपने एक नई बात बताई है, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये इस बात का तजर्बा नहीं है कि सिगरेट के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती। वैसे दुनिया में प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट देना ये एक शायद इंटरनेशनल लॉ है, सो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वाकई सिगरेट के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मगर आपने एक लॉजिक दी है कि जो खराब चीज को क्या खराब बोलने के, ये क्या मजीद खराब हो जाएगी बात, यूं सुनने में अच्छा लगा आपकी बात को। जी कॉल दें
प्यारे गाने शुरा, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि हमारे दादा वो भी सिगरेट पीते हैं, जब वो सिगरेट पीते हैं तो उनके मुंह से धुआं निकलता है वो हमारे अंदर भी जाता है, तो हम उनको किस अंदाज से मना किया करें?
अब मैंने नियत की हुई है कि ये जो सिगरेट की डॉक्यूमेंट्री है और अभी आपने वो थोड़ी देर पहले एक और भी डॉक्यूमेंट तलाक के ताल्लुक से जो आपको चीजें बयान की, तो इसके अलावा और भी चंद मैंने चीजें बयान की हैं, तो इंशाल्लाह ये जो डॉक्यूमेंट्री है मैं इन्हें अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, ठीक है? सिगरेट की तो मैंने अभी नियत की हुई है इंशाल्लाह, जिससे मैं अपना जो मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है और मेरा जो अपना यूट्यूब का जो पेज है मैं उस पर डाल दूंगा, तो आप ये भी बता सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ कुछ वजात भी होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर ये बता दें। मोबाइल में आजकल यूं भेज देते तो लोग देख लेते हैं, सो डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीजें ना, ये हो सकता है लोग इंटरेस्ट ले लें उसके अंदर और देख लें कि जस्ट एक स्पीच नहीं है, पूरी एक इसकी कैलकुलेशन है। तो ये है, अलबत्ता इस तरह जो भी घर के लोग सिगरेट पीते हैं वाकई आपके इस अमल से आपके फैमिली मेंबर स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, प्लीज छोड़ दें, कोई इसका भला नहीं है, फायदा नहीं है। जी
निगरानी सूरा, आपके सिलसिला समक आमोश खबरों में आपने अभी मियां बीवी के रिश्ते के हवाले से मदनी पूरे इरशाद फरमाया, तो ये भी सुना जाता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मियां बीवी में जो नोक झोंक होते हैं ये इससे मोहब्बत बढ़ती है, तो क्या ये सही है?
नहीं ये सही नहीं है, ये नोक झोंक ना होने दे, मेहरबानी करे, या हमारे यहाँ वो एक मोहब्बत भरी, शफकत भरी, प्यार भरी एक कहते हैं कि एक कंप्लेंट्स होती है, एक मीठी नाराजगी होती है, वो एक अलग होती है, उसका ट्यून अलग होती है, उसका एक साउंड ही अलग होता है, मगर मैं तो नहीं कहता कि इसको आप वो दें, ये इसमें मतलब बदतमीजी हो जाती है, बद अखलाकी हो जाती है, टेम्परामेंट आउट हो जाता है। हाँ, खुशतबई होना, आपस का एक माहौल बना कर रखे आप एक दूसरे के साथ, थोड़ी खुशतबई करें, हंसी मजाक करें, एक शरीयत के दीन के दायरे में रहकर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी मोहब्बतें बढ़ती भी चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो नोक झोंक नहीं, इसको मेरा मशवरा ये है कि इसको हवा ना दिया जाए। जी
डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह निगरानी शुरा का सिलसिला बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त है। अल्लाह ताला हमारे निगरानी शुरा को, सारी दावत इस्लामी को सलामत रखे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह निगरानी शुरा एन हमारी नफ्सियात के मुताबिक और प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और बहुत ही खूब। मुझे अच्छी तरह याद है कि वीडियो गेम्स के हवाले से आपने एक दफ़ा आपने और मेरी सुन्नत ने रमजान मुबारक में तरगीब दिलाई, और माशाल्लाह हजारा हजार बच्चों ने, नौजवानों ने वीडियो गेम्स से तौबा की। और आज आपने सिगरेट नोशी के हवाले से फरमाया, और इसी तरह तलाक के मामलात में मियां बीवी को समझाया। माशाल्लाह ये भी बहुत खूब टॉपिक थे। और इसी तरह तरबियत औलाद के हवाले से बहुत जबरदस्त आपके टॉपिक्स होते हैं। अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आपके सदके हम पे भी करम करे। इंशाल्लाह मैं नियत करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपकी तालीमात पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी सुने की कोशिश होगी खुद भी अमल करें और दूसरे तक भी पहुँचाए। आपसे दुआ की गुजारिश है।
यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े प्यारे अंदाज से हौसला अफजाई फरमाई, और बेसिकली आपने अपने खूबसूरत अंदाज से नेकी की दावत भी नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश की है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारी सोसाइटी में, दुनिया के कई मुल्कों में, और वाकई इशू है, ये डेफिनेटली इशू है। और वो क्या है? उसका नाम है टिड्डी। टिड्डी दल आपने सुना होगा, ये लश्कर को दल यानी टिड्डियों का लश्कर, टिड्डियों का सैलाब इसको कहते हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं कि ये टिड्डी दल है क्या, ये टिड्डी क्या है, और उसके ताल्लुक से ये किस तरह हमारी फसलों खेतों को ये तबाह करती है। आइए इसके ताल्लुक से आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं।
टिड्डी दल के हमले, आलमी इदारे खुराक ने गिजाई किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी मईशत को 600 अरब रुपए नुकसान का अंदेशा। टिड्डी दल 30 साल बाद दोबारा मुतहर्रिक हो गई है, जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया के 52 ममालिक मुतासिर हैं। फरवरी में मशरकी अफ्रीकी ममालिक समेत मुख्तलिफ एशियाई खित्तों में टिड्डी दल के बड़े हमले हुए, इससे पाकिस्तान भी महफूज न रह सका। टिड्डी दल के पाकिस्तान में ताहल हमले जारी है। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के इदारे NDMA के मुताबिक मुल्क भर के 51 अजला इस वक्त टिड्डी दल के हमलों की लपेट में हैं। इनमें बलूचिस्तान के 33, पंजाब के 15, सिंध के 6 और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला शामिल हैं। टिड्डियों का झुंड आंधी की तरह आता है, और एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपक में अपनी लपेट में ले लेता है, और इसके बाद किसान का नुकसान शुरू हो जाता है। टिड्डी दल इसकी आँखों के सामने इसकी फसल का सफाया कर देता है, और ये सिर्फ मिनटों की बात है। इसके हमले से एक दिन में इतनी खुराक जाया होती है जो अमूमन 35,000 लोगों के खाने की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी होती है। पाकिस्तान के पंजाब के शहर लोधरा के एक गांव के बासी किसान ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। चंद रोज पहले टिड्डी दल ने इनकी कपास की फसल पर हमला किया था, जो उन्होंने हाल ही में काश की थी। टिड्डी इनके फसल पर सिर्फ 25 मिनट के लगभग रुकी होगी, और इसके बाद इनके 60 एकड़ के खेत पर कहीं कहीं कोई कपास का पौधा बाकी बचा। किसान के मुताबिक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आंधी आ रही है। वो सुबह 8 बजे के आसपास का वक्त था। टिड्डियाँ इतनी बड़ी तादाद में थी कि बादलों की तरह दिखाई दे रही थी। टिड्डी दल के खेत में उतरने के बाद सिर्फ वही पौधे बच गए जो सड़क के करीब थे या जिस तरफ से लोगों की आमदोरफ थी। टिड्डी दल क्या है? टिड्डी या लूकस एक सहराई हशरात है, जो चंद सदियों पहले तक तो तकरीबन पूरे दुनिया के सहराओं में पाया जाता था, मगर अब इनकी आमाजगाएं सिर्फ एशिया और अफ्रीका के सहराओं तक महदूद हैं। इसको अरबी में जरात कहा जाता है। टिड्डी का जिक्र कुरान करीम में आया है। टिड्डी बुनियादी तौर पर ग्रास हॉपर के खानदान से ताल्लुक रखती है। ग्रास हॉपर उड़ नहीं सकता, इसके पर और टांगे छोटी होती है, जबकि टिड्डी के पर और टांगे बड़ी होती है, जिस वजह से ये उड़ सकती है। लश्कर या झुंड को दल कहते हैं।
इसी तरह टिड्डियों के झुंड या लश्कर को टिड्डी दल कहा जाता है। टिड्डी की पसंदीदा जगह वो है जहाँ रेत, नमी और पानी दस्तियाब हो। अगर मादा टिड्डी को मवाफिक मौसम दस्तियाब हो जाए तो ये कई सौ तक अंडे दे सकती है, जिससे इसकी नस्ल तेजी से बढ़ती है। एक टिड्डी की तबाही उम्र 3 से 5 माह के दरमियान होती है। टिड्डियाँ उमूमन झुंड की सूरत में प्रवास करती हैं और इस वक्त जो टिड्डी झुंड देखे जा रहे हैं इनकी लंबाई 60 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर तक है। अफ्रीकी और सहराई टिड्डियों के ये झुंड न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुए बल्कि इस वक्त अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में फसलों और जानवरों के चारे वगैरह को तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में गिजाई तहफ़ खतरे में पड़ गया है। ये तबाहकुन हशरात सोमालिया और एथोपिया में तबाही फैलाने के बाद इस वक्त कीनिया में गारतगरी कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कौमी सतह पर हंगामी हालत का ऐलान कर चुका है, जहां टिड्डियों के इन झुंडों ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कपास, गंदम, मकई और कई दीगर अजनास की फसलों को बर्बाद किया है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला बड़ी तेजी से टिड्डी दल के हमलों से मुतासिर हुए जा रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में जिस तवातुर के साथ टिड्डी दल के हमले ताहल जारी हैं, इससे पाकिस्तान की मईशत को 600 अरब रुपए नुकसान पहुंच सकता है। टिड्डी दल के फसलों पर यलगार और हमलों पर अक्वामे मुत्तहिदा के खुराक के इदारे ने खबरदार करते हुए कहा है कि अब तक हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। टिड्डी दल के हमलों में होने वाली फसलों की तबाही से गिजाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। इधर इंडिया की 2 रियासतों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी टिड्डी दल हमला आवर हुआ है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में टिड्डी दल का हमला कोरोना वायरस से बड़ा मुआशी खतरा साबित हो सकता है। अमरीकी जरीदे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ज़राअत पाकिस्तान मईशत का दूसरा सबसे बड़ा शोबा है, जो मुल्क की मजमूई पैदावार का 20% हिस्सा पूरा करता है और मुल्क की निस्फ अफरादी कुव्वत इस शोबे से वाबस्ता है। वजारत तहफ़ुज़ खुराक और तहकीक के हुकाम के मुताबिक टिड्डी दल अब तक 57 मिलियन हेक्टेयर के इलाके में फैल चुके हैं, जिसमें से 23 मिलियन हेक्टेयर पर फसलें मौजूद हैं, जबकि टिड्डियां तेजी से फैल रही हैं और इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है।
ये बहुत बड़ा एक इशू है और शायद आपको याद होगा या आपकी मालूमात में होगा, ये टिड्डी ये वो जानवर है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की भी नाफरमानी करती थी, अल्लाह की नाफरमानी भी करती थी कौम फिरौन, तो इन पर भी जो अजाब नाजिल हुए इन अजाब में एक अजाब टिड्डी का भी अजाब था। अल्लाह ताला से हम उसके अजाब से, उसके नाराजगी से पनाह चाहते हैं। टिड्डी के ताल्लुक से एक हदीस पाक में आपको सुनाऊं, हजरत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से टिड्डी के मुतालिक पूछा गया तो फरमाया कि अल्लाह का बड़ा लश्कर है, मैं न इसे खाता हूँ ना इसे हराम करता हूँ। ये हराम नहीं है, जायज़ है, हलाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इसे तनावुल नहीं फरमाया। अब ये जो यहाँ बात बयान हुई ना कि ये अल्लाह का बड़ा लश्कर है, मैंने इसको पढ़ा है कि इसमें लिखा है कि अल्लाह का बड़ा लश्कर है, तो इस बारे में मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते हैं परिंदों में सबसे बड़ी जमात टिड्डियों की है और जब खुदा करीम खुदा जल्ला जलालहू किसी कौम पर गजब करता है तो उस पर टिड्डी का अजाब भेजता है। ये इस कौम की खेती बाड़ी, दरख्त, फल वगैरह सब कुछ खा जाती है और उस पर कहत मुसल्लत हो जाता है। हजरत इकरिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ये उस वक्त की बात है जब हजरत सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की आंखों की रोशनी जाती रही तो कि आपने हजरत इब्ने हनफिया के हां नाश्ता किया तो उस दौरान हमारे दस्तरखान पर एक टिड्डी गिरी। मैंने उसे पकड़कर हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ कर दिया और अर्ज की, ए रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, हमारे दस्तरखान पे टिड्डी गिरी है। आपने मेरा नाम पुकारा और मैंने अर्ज की मैं हाजिर हूं। फरमाया इस टिड्डी पर सुरियानी जबान में लिखा है, बेशक मैं रब हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं वाहदहू ला शरीक हूं। यानी उस टिड्डी पर अल्लाह का एक पैगाम लिखा हुआ था, ये सब एक इबरत के लिए बात है। मैं वाहदहू ला शरीक हूं, टिड्डियां मेरे लश्करों में से एक लश्कर है, इसे मैं अपने बंदों में जिन पर चाहूं मुसल्लत कर देता हूं। تو ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں تو اس میں نہ اس کا مکمل انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر جزم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہی ہے، کہ عذاب ہی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر جو کتابوں میں باتیں لکھی گئی ہیں، جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور جس طرح اس کی وجہ سے جو ایک اجناس یعنی کہ خوراک اور غذاؤں کی قلت کا جو اندیشہ ہے، یعنی جو سمجھے کہ جو کرونا کی وجہ سے جو معاشی مسائل ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ایشو بن سکتا ہے. اور خالی پاکستان کا نہیں ہے، دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک افیکٹڈ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرم کرے اور ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو. ہم بس یہ ہم سدھر جائیں، سچی ہم سدھر جائیں. ہم سدھرے ہوئے نہیں ہیں، ہم سدھرے ہوئے نہیں ہیں. ہماری حالت بہت بری ہے. نمازوں کی ہمارا کوئی مطلب معاملہ دیکھ لیجئے، سچ کا معاملہ دیکھ لیجئے، ملاوٹ کے تعلق سے دیکھ لیجئے، غیبت چکلی کے تعلق سے دیکھ لیں، شراب جوا اور سود، اللہ کی پناہ. اب سود پر تو میں کتنا بولتا رہتا ہوں. پھر نظام تعلیم پر بات کریں تو اتنے ہی مطلب کہ مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں، ورنہ اتنے ایشوز ہیں، اتنی باتیں ہیں، کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے سینہ کہ اس کو بند خالی کریں. لیکن بس کیا کریں، کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حکمت عملی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. مگر حقیقت یہ کہ ہم لوگ سدھر نہیں پا رہے. ہماری اصلاح بہت ضروری ہے. اپنے رب کے آگے سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، معافی مانگیں، گناہ چھوڑیں، مساجد آباد کریں، قرآن کی تلاوت، طہارت، عورتوں کی بے شرمی بھی حیائی کا آپ خود ہی جائزہ لے لیں. مطلب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہے. اپنی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں تو بہت برا حال ہے. آپ دیکھیے یار، شراب دیکھ لیں کتنی عام ہے، شراب کتنی عام ہے. تو اللہ آپ کو میری آپ کی میری حفاظت کرے. اور اب یہ کہ دیکھیں، میں پرسنلی طور پر عرض کروں، ٹھیک ہے پوری سوسائٹی پر، معاشرے پر ایک ڈسکس بنتی ہے اور ہم کرنی بھی چاہیے تاکہ اصلاح کا کام ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، اللہ دعوت اسلامی کو ترقی و عروج دے. یہ مزید اللہ کرے کہ ہمارے ہم سب مل کر مبلغین مبلغات اس مدنی کام کو اور آگے بڑھائیں. لیکن ایک انڈیویجل بات کریں، ایک اپنی پرسنل کیپیسٹی پر اگر ہم بات کریں، تو ایک گھر تو ہے نا آپ کا میرا. ہم گھر کی اس چار دیواری کا جائزہ لیں، ہمارے گھروں میں نمازیں کتنی، ہمارے گھروں میں گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچت کتنی، ہمارے گھروں میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، ہمارے گھروں کی آمدنیاں جو ہیں، وے آف انکم ہے، ارننگ جو ہے وہ کتنی پاکیزہ صاف ستھری حلال و طیب ہے، ہمارے گھروں میں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، میاں بیوی کا آپس میں کیا سلوک ہے، آس پاس پڑوسیوں کے تعلق سے دیکھے تو ہمارے معاملات کیا ہیں، دیگر ہمارے جو انڈیویجل معاشرتی آس پاس پڑوس محلہ اس کے تعلق سے دیکھیں، ہماری بازاروں کا آپ دیکھیں. یعنی میں اپنی پرسنل کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں. ہر شخص اپنا گھر اپنا کاروبار دیکھ لے کہ اگر آپ جو کام کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، وہ حلال و طیب اللہ کے دین کے اللہ کی رضا کے مطابق ہے. آپ جس طرح آس پڑوس پڑوس میں محلے میں رہ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں، وہ درست ہے. اپنے گھر کی چیزیں دیکھ لیں، وہ درست ہے. اگر ہر کوئی اپنا اس اپنی انڈیویجل اور اپنی فیملی کیپیسٹی کے ساتھ اب اگر ریکٹیفیکیشن کی طرف چلا جائے اور درستی کی طرف چلا جائے، تو آپ بتائیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو باہر نکلتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں. اور پھر اس میں نیکی کی دعوت عام ہو، برائی سے منع کرنا اس کو شروع کیا جائے تاکہ یہ برائیاں دم توڑے، برائیاں ختم ہو. تو یوں مطلب دیکھ تو اللہ کی رضا پانے والے کام، اس کی رحمت پانے والے کام، عذاب کو دور کرنے والے کام، اس کے غضب سے بچنے والے کام کریں نا. ہم تو اس کے غضب کو ابھارنے والے کام کرتے ہیں. تو سود تو ویسے اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو یہ کب کیا کیا باتیں بیان کروں آپ کو. اب دیکھیے یہ ٹڈی دل کس قدر خطرناک پرابلم، کس قدر خطرناک. لیکن جب بندہ اپنے رب کا نام لے کر، یا حلیبوں، جب اپنے رب کا نام لے کر جب اپنی فصلوں پر اپنی ان کھیتی پر چھڑکاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام کی برکت سے کس قدر محفوظ فرماتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں جو میرے سنت نے یہ وظیفہ دیا, اس کے بعد اس وظیفے کی برکت دیکھیں, یعنی اللہ کے نام کی برکت دیکھیں. جب اللہ کے نام کی برکت سے اس قدر فائدہ ہو رہا ہے تو جب یہ قوم اپنے رب کے حضور سدا ریز ہو جائے, اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنے رب کا ذکر کرتی رہے تو بتائیں کہ اس کی کھیتی, اس کے مال, اس کے جسم, اس کی جان, اس کی عزت, آبرو, گھر بار پر کتنی رب کریم کی بارگاہ سے رحمت و برکتیں نازل ہوں گی. تصور کر رہے ہیں آپ. آئیے وہ پہلے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں, پھر اس کی مدنی بہاریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا مدنی بہاریں آئیں.
یا حلیم و کاغذ پر لکھ کر کسی پانی کے پتیلے میں, بالٹی میں پاک پانی ہو, اس میں اس کو ڈال دیں, اس بچے کو سیاہی اس کی وہ ہو کہ جو پانی میں گل جائے. اب وہ پانی اسپرے میں بھر لیا, اس سے چھڑکیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ کرے گا تو آپ کے کھیتوں کی حفاظت ہو. یہ خیال رکھنا کہ ناپاک کھاد پر وہ نہ پڑے کہ یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کریم ٹڈی دل سے ہمارے کھیتوں کی حفاظت فرمایا, جہاں جہاں یہ حملہ آور ہوئے ہیں اللہ کریم اس سے آسانی کر.
ماشاء اللہ. اب اس پر جو عمل ہوا, اس وظیفے پر, اس ورد پر اللہ کا نام لے کر اس کی جو برکتیں نصیب ہوئیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں.
امیر اسنت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے یا حلیموں کا کاغذ پر لکھ کر ٹینک سپرے کی اپنی کپاس پر, پھر بہت اچھا رزلٹ آیا کہ ٹڈی دل کے حملے سے کپاس بالکل محفوظ رہی اور اطراف میں سب کپاس میں سے ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور نقصان بھی ہوا کپاس کا, لیکن ہماری فصل پر نقصان بھی نہیں ہوا اور ٹڈی دل کا حملہ بھی نہیں ہوا.
یا حلیموں کا ہم نے وہ وظیفہ پڑھا اور ہماری فصل ٹڈی دل سے محفوظ رہی. ہم اسر کا حصہ آئندہ سال اور اسی سال دعوت اسلامی کو دیں گے.
امیر علیہ سنت نے جو ٹڈی سے اپنی فصلوں کو بچانے کا جو وظیفہ بتایا تھا, الحمدللہ ہم نے اپنی فصلوں پر وہ پڑھا ہے اور ہماری فصلوں کو ٹڈی نے نقصان نہیں پہنچایا.
پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے ایک ورد بتایا تھا یا حلیم, وہ پڑھا, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے علاقے کی فصلیں تباہ ہونے سے ٹڈی دل کے حملے سے بچ چکی ہیں.
دیکھیں آپ کتنا فائدہ ہوا. دوسری طرف میں آپ کو ایک اور ایک پہلو, یہ وہی میں آپ کو عرض کیا نا کہ آپ رب کا نام لیا, رب کے مبارک نام کی یہ برکت ظاہر ہوئی. کتنا مسلمان کا اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ایمان کامل ہوتا ہے, اس کو لذت ملتی ہے اور اس کو اس کی رب سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ ایک ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے. بعض کسانوں کا جو کھیت والے تھے ان کا یہ بھی ذہن تھا, انہوں نے ایک اچھا گمان کیا ہے, ایک اچھا شگن لیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے عشر ادا کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ ایک اچھا گمان ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ نے ہماری مطلب فصلوں کی, ہماری کھیتیوں کی حفاظت کی. اور ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے. یہ بھی اس طرح کی ہے, لیکن ایک اچھے گمان اور حسن زن کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں, یہ سب حسن زن کی بنیادوں پر باتیں ہیں, اور اللہ کے معاملے میں بندے کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تو وہ بھی چلیں, اس کے بھی تاثرات دیکھتے ہیں.
ٹڈی دل کا بہت شدید حملہ ہوا, ملتان میں بھی دوسرے علاقے میں بھی ہوا, لیکن اللہ نے ہماری فصل کو محفوظ رکھا. ارے ہمارے آس پاس کی فصلوں کو نقصان ہوا لیکن میری فصل کو نقصان نہیں ہوا. میں الحمدللہ اپنی فصل کا پورا عشر ادا کرتا ہوں.
ساری فصل ماشاء اللہ بہت اچھی رہی ہے, بہت اچھی رہی ہے, پک گئی ہے, سب بن گئی دیے تے اساں بھی تو کچھ نہیں جانتے, یہ جاننے کہ اساں عشر دینے اور عشر دی وجہ تو شاید سارے اللہ تعالی نے مہربانی کی تھی.
ایک نیوارا ٹڈی دل لائیے ساری فصل جا کے لے پئیے, اساں ایتھے کون آسے, اساں ملتان آسے, ساکو دوار فون آ گئے بھائی تواری فصل ٹڈی دل لتی پئیے, تسا آ کے بجاؤ. ہر کہنے بجاون واسطے برتن وغیرہ کٹن کہیں دھوئے لین کہیں کچھ کیتے, اللہ پاک دی مہربانی تھئیے تو ساری فصل جو اپنے آپ اور چلی گئی ہے. الحمدللہ سا اپنی فصلوں کا عشر ادا کریں جن کی وجہ تو اللہ پاک نے سارے ذرائع فرمائے.
کچھ دن پہلے ٹڈی دل کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ یہ برابر میں میرے ہمسایوں کی فصل بالکل تباہ ہو گئی تھی, یہ دوبارہ انہوں نے بےچاروں نے کاشت کری ہے. تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہمارے پاس اسلامی بھائیوں نے دیا تھا, عشر کے احکام ہم نے وہ پڑھا, اس سے فضیلت پتہ چلی عشر کی. جس ٹائم ہم پڑھ رہے تھے پتہ چلا عشر فضل کی زکات کو کہتے ہیں, ہم نے اپنی بھی نکالی, اپنے رشتہ داروں کی بھی نکالی, دوست احباب سے بھی اکٹھی کر کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پہنچائی. تو میری نظر میں امیر اہل سنت کا یہ جو کرم تھا فیض تھا اس کی وجہ سے ہم نقصان سے بچ گئے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ عشر کاٹنے کے بڑے فائدے ہیں. آپ اپنی بھی کاٹی کرو, اپنے دوست احباب سے کڑھائی کرو, دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اپنے مال کی زکات. دیکھیں زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, سال پورا ہونے پر زکات ہے. ہو سکتا ہے بعضوں کی زکات اس مہینے میں فرض ہوتی ہو, بعضوں کی زکات اگلے کسی مہینے کی تاریخ میں فرض ہوتی ہو. زکات سال پورا ہونے پر ہے. آپ کا سال کب پورا ہوتا ہے یہ کیلکولیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ مال کی زکات. عشر کا تعلق زکات کے جو احکام ہیں, عشر کی کھیتی باڑی اس کا تعلق الگ ہوتا ہے. میں جو ہم جو گھروں میں اپنے سونے چاندی مال روپیوں پر جو زکات دے رہے ہوتے ہیں مال تجارت وغیرہ کے تعلق سے, اس کا اور وہ سال پورا ہونا اور یہاں پھر کھیتی باڑی کے اس کے اپنے اپنے احکام ہے کہ کب کس چیز پر جیسے فصل ہوگی اس کی کس طرح عشر وغیرہ دینا ہوتا ہے. تو یہ اس کا رسالہ پڑھ لیں, عشر کے احکام انشاءاللہ اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں.
یہ جو ٹڈی دل آیا ہوا ہے پاکستان میں, یہ جو فصلوں پہ ٹڈیاں حملہ کر رہی ہیں, پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے جو دلوں کی راحت میں فرمایا کہ یہ بندوں کو نہیں کاٹتی, یہ فصلوں پر حملہ کرتی ہے, اگر بندوں پر حملہ کرے تو کیا ہو, تو آپ سے عرض ہے کہ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں, اور یہ مقام شکر بھی ہے, اس تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ جزا.
اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے ٹڈی. اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا, یہ حدیث ہے, یہ اللہ کا لشکر ہے. تو اس رب کی رحمت ہے کہ اسے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ تعالی محفوظ فرماتا ہے. تو یہ واقعی مقام شکر ہے. ویسے تو اگر شکر کے پہلو دیکھیں تو بہت سارے شکر کے پہلو ہیں کہ مطلب آپ جیسے کرونا دیکھ لیں, آپ کرونا کے تعلق سے جو ایک میڈیکلی لینگویج ہے کہ یہ کس کس طرح مطلب کہ افیکٹ کرتی ہے دوسرے فرد کو. لیکن اگر یہ مثال ہوا اور فضا میں ہو تو سانس لو اور اندر چلا جائے تو پھر بندہ کرے کیا, کب تک آپ اپنے منہ پر کپڑا رکھیں گے, کب تک اس سے بچنے کا سانس کے تعلق سے کیا کریں گے. تو جس طرح یہ آیا ہے کرونا, وہ اپنی جگہ پر ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کو, اللہ آپ کی میری حفاظت کرے, لیکن یہ کس طرح مزید آ سکتا تھا اس وقت بھی غور کیا. تو اللہ یہ بجلی, آسمان کی بجلی جس کا میں نے بیان شروع میں کیا, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ کیا ہے, یہ پانی بادل ہوا اور پانی اور اس میں سے آگ, یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کی شان ہے جو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے. ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جو غیر جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے کہ اس رب پر ایمان لے کر آؤ جو بادلوں کا مالک ہے, جس کے حکم سے بارش برستی ہے. تو یہ شکر کے پہلو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. جی کال دیں.
سوال یہ ہے کہ میں بھی سگریٹ پیتا تھا, اگزاد شونا کی ترغیب دلانے پہ میرے بچوں نے میرے سگریٹ توڑ دی, اور آج سے پکا عہد ہے کہ میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو وبا لگی ہے اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب کو جانے اس وبا سے محفوظ کرے. جزاک اللہ خیر.
آمین ماشاء اللہ, بہت خوب, اللہ استقامت دے. اچھا لگا آپ کی کال سن کر ماشاء اللہ. جی
میں بہت عرصے سے سگریٹ پی رہا ہوں اور کافی دفعہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے مگر چھوٹتا نہیں ہے, اور اگر چھوڑ دیتا ہوں تو پھر مجھے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے مجھے کوئی بہترین مشورہ دیجیے گا.
اس میں یہ عرض کروں گا, پہلے تو اللہ آپ کو استقامت دے, دعا کرتے ہیں اور اللہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے, صحت دے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر سے امیڈیٹلی آپ کو ایسی میڈیسن لے لیں, کوئی ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں, کوئی حکیم صاحب ایسے تجربے کا ہو تو پوچھ لیں کہ میں نے یہاں سگریٹ چھوڑی ہے مجھے یہ پرابلم ہے, تو آپ کو امیڈیٹلی آلٹرنیٹ دے دیں گے ڈاکٹر صاحب یا کوئی حکیم صاحب, مضبوط حکیم صاحب ہوں, یعنی جو بھی معالج ہو طبیب ہو, وہ فوراً آپ کو ایک آلٹرنیٹ چیز دے دیں گے جس سے آپ کا وہ جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ پھر خدا نہ خدا سگریٹ کی طرف چلے جائیں, تو آپ کو وہ پرابلم کو ریزالو کر لیں گے. امیڈیٹلی آپ آلٹرنیٹ لے لیں تو آپ کو جب وہ ٹینشن ختم ہو جائے گا تو رب نے چاہا تو یہ اس پر استقامت میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے اور زمینی آسمانی بلاؤں اور وباؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچائے, ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
اے قارئ